ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अध्याय 20 अधःपतन। उस समय इस देश के अधःपतित स्थिति अर्थात दुर्दशा में पहुंचने का सबसे मुख्य कारण फूट तथा आपस का विद्रोह था। इसके बाद इस बहुपत्नी की प्रथा ने भी भारत के अधःपतन में बहुत सहायता पहुंचाई थी। यदि क्षत्रिय जाति में बहुपत्नी प्रथा का चलन प्रचलित नहीं होता तो आज भारत का इतिहास वास्तव में अपना दूसरा होता। पृथ्वीराज के शासनकाल में और इसके पहले भी बहुपत्नी प्रथा का चलन बहुत तेजी से फैला हुआ था। पृथ्वीराज ने इसी के चक्कर में पड़कर किस तरह अपनी सेना, सामंत तथा राजबल का नाश किया था, यह सबको पता है। वास्तव में यदि पृथ्वीराज सावधान होकर काम करते और इन प्रलोभनों में पड़कर अपना धन बल, जन बल और सैन्य बल नष्ट नहीं करते तो शहाबुद्दीन कभी भी भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फूट के कारण भी उस समय देश की बहुत हानि हो रही थी, परंतु पृथ्वीराज के इस बहुपत्नी काम ने फूट से बढ़कर काम करके दिखाया था। रासों से पता चलता है कि पृथ्वीराज ने 11 विवाह किए और कोई भी विवाह ऐसा नहीं हुआ जिसमें 2-4 हजार मनुष्य मारे न गए हों। उस समय यह बहुपत्नी प्रथा कितने जोरों पर थी इसका प्रमाण खुद पृथ्वीराज ही हैं। पृथ्वीराज के अधःपतन का तीसरा कारण अहंकार का उत्पन्न हो जाना है। शहाबुद्दीन को बार बार हराने के कारण पृथ्वीराज का बल तथा अहंकार बहुत बढ़ गया था। जन अहंकार और धन के अहंकार के अलावा सबसे बड़ा अहंकार प्रेम अहंकार था जिसने पृथ्वीराज की सबसे अधिक दुर्दशा कराई थी। यदि पृथ्वीराज ने एक वैश्या के चक्कर में पड़कर कैमास को मार नहीं डाला होता, यदि धन के घमंड में चूर ना होकर विचार और विवेक को काम में लाकर चामुंड राय पर बेकार में ही अत्याचार ना किए होते और यदि संयोगिता तथा दूसरी राजकुमारियों के रूप की प्रशंसा सुनते ही काम मद में मतवाले नहीं बनकर अपने देश तथा राज्य शासन की व्यवस्था पर ध्यान दिया होता तो उन्हें कभी भी इस तरह दुर्दशाग्रस्त होकर प्राण नहीं गंवाना पड़ता। उनकी दूसरी रानियों की बात यदि छोड़ भी दी जाए तो केवल संयोगिता के कारण ही बहुत सारे वीर सामंत तथा देश रक्षकों से उनको हाथ धोना पड़ा था। देश की रक्षा के लिए जिन साधनों की जरूरत थी वे सब उस समय होने के बाद भी केवल अहंकार के कारण पृथ्वीराज ने इस देश को हमेशा के लिए रसातल में पहुंचा दिया और हमेशा के लिए उसके पैरों में पराधीनता की बेड़ी डलवा दी थी। हालांकि पृथ्वीराज के बहुत सारे वीर सामंत मारे जा चुके थे, फिर भी उस समय भारत भूमि वीरों से शून्य नहीं हो गई थी। उस समय पास में शस्त्र थे और भारत में स्वतंत्रता थी। यदि संयोगिता को लाने के बाद पृथ्वीराज उसके प्रेम में एकदम मतवाले ना बनकर अपना राजकाज संभालते रहते, यदि एकदम रंग महल में ही नहीं रहने लगते और यदि अपने नए सामंतों पर ही राज्य का शासन भार छोड़कर महल में नहीं पड़े रहते तो उनकी इतनी भयानक हार नहीं होती। जब से पृथ्वीराज संयोगिता को कन्नौज से उठाकर ले आए थे तब से ही वे संयोगितामय हो गए थे। वे संयोगिता के प्रेम से ऐसे मुग्ध तथा उसकी सुंदरता के जाल में ऐसे उलझ गए कि उन्होंने अपने राज्य को देखना, दरबार में आना जाना तथा बचे खुचे वीर सामंतों से मिलना जुलना तक त्याग दिया था। प्रजा अपने राजा के दर्शन ना पाकर हाहाकार कर उठी। राज्य में बंधनहीनता उत्पन्न हो गई थी। मंत्री का पद जैत राय को मिला था जो एक बहादुर मनुष्य था, परंतु इससे क्या होता जब राज्य का अधिकारी खुद अपने राज्य की रक्षा में मन ही नहीं लगाता तो क्या राज्य की रक्षा हो सकती। पृथ्वीराज का इन बातों पर ध्यान नहीं था और वे संयोगिता के साथ महलों में आनंद कर रहे थे। रासों से पता चलता है कि पृथ्वीराज इस समय बिल्कुल ही कर्तव्यहीन हो गए थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अपने अपमान का बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके दूत वेश बदल कर लगातार दिल्ली में घूमा करते थे। वे क्षण क्षण का हाल उसके पास पहुंचाया करते थे। उसे लगातार यह खबर मिल रही थी कि पृथ्वीराज इस समय राज्य की रक्षा में मन नहीं लगा रहा है। उनके राज्य में स्त्रियों की प्रधानता हो रही है और उनके बहुत सारे सामंत मारे जा चुके हैं तथा जो हैं वे भी निकम्मे हो रहे हैं। इसी तरह जब उसे दिल्ली का पूरा हाल पता चला तब वह फिर से सेना इकट्ठी करने लगा और थोड़े ही दिन में एक जबरदस्त यवन सेना लेकर दिल्ली की ओर चल दिया। जयचंद ने भी इस बार उसका साथ दिया और भारत के लिए बहुत बुरा समय आ पहुंचा। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा तब सारी प्रजा दुविधा में पड़ गई। जिस पर देश की रक्षा का भार था वही प्रेम में अंधा हो रहा था। प्रजा व्याकुल हो उठी। उसने राजा को सावधान करना चाहा, परंतु वहां तक किसी की पहुंच ही नहीं हो पा रही थी। यदि कोई समाचार भेजा भी जाता था तो वह पृथ्वीराज के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। देश के दुर्भाग्य से संयोगिता ने जन्म लिया था और भारत को अधय पतित अवस्था में डालने के लिए ही पृथ्वीराज इस तरह उसके प्रेम जाल में बंध गए थे। उनके सामंत बहुत कोशिशें कर रहे थे कि पृथ्वीराज सावधान हो जाएं। कई बार इसी आशा से ही उनके पास पत्र भेजे गए थे, परंतु पत्र बीच में ही गायब हो जाते थे। उनको राज्य का समाचार प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अंत में चंद ने एक पुर्जा भेजा जिसमें लिखा था कि तुम तो महल में आनंद कर रहे हो, परंतु इधर शहाबुद्दीन दिल्ली पर चढ़ा चला आ रहा है। पृथ्वीराज ने पुर्जा देखा, परंतु उस समय वे संज्ञा शून्य अर्थात बेहोश से हो रहे थे। उन्होंने पुर्जा पढ़ा और झल्लाकर उसे फाड़कर फेंक दिया। जिस दिन उनके पास कवि चंद का भेजा हुआ पुर्जा गया है उसी दिन रात के समय उन्होंने एक भयानक सपना देखा जिसके कारण उनका मन विचलित और परेशान हो रहा था। यह सपना उनके पतन की सूचना दे रहा था। धीरे धीरे राज्य की इस बंधनहीनता का समाचार रावल समर सिंह जी के पास भी जा पहुंचा। पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि रावल समर सिंह ने भी एक भयानक सपना देखा था। उसी सपने के कारण उन्हें विश्वास हो गया था कि भारत के अधय पतन के दिन आ गए हैं। और जब उन्होंने दिल्ली की इस बुरी अवस्था का हाल सुना तब अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर पृथ्वीराज की सहायता के लिए वे चल दिए। वे अपने साथ बहुत सारी सेना लेकर चले थे क्योंकि उन्हें समाचार मिल चुका था कि मोहम्मद गौरी जल्द ही भारत पर आक्रमण करना चाहता है। रावल समर सिंह जी दिल्ली आए, परंतु यहाँ उनकी अगवानी करने वाला कोई नहीं था। वास्तव में बात यह थी कि पृथ्वीराज को इस बात की खबर ही नहीं थी। जिस समय रावल समर सिंह जी चित्तौड़ से चले थे उसी समय से उनका मन व्याकुल हो रहा था। दूरदर्शी समर सिंह ने भविष्य अंधकारमय देखकर ही अपनी गद्दी पर अपने पुत्र करण सिंह को बैठाया था, परंतु वे यह नहीं समझ सके थे कि एकदम यह अवस्था ही आ पहुंची है। रासों से पता चलता है कि रावल समर सिंह जी के आने के कई दिन बाद पृथ्वीराज को उनके आने का समाचार मिला था और वे उनसे मिलने गए थे। पहले तो उन्होंने उन्हें विदाई देकर विदा करना चाहा, परंतु समर सिंह जी जिद करके रुक गए। यदि कोई दूसरा राजा होता तो इसे अपना अपमान समझ गुस्सा होकर चला जाता, परंतु दूरदर्शी बुद्धिमान रावल समर सिंह जी ने इस समय अपने मान अपमान का ध्यान छोड़कर देश की रक्षा करना ही उचित समझा। इसीलिए जब पृथ्वीराज उनसे मिलने गए तब उन्होंने पृथ्वीराज की मीठे शब्दों में बहुत निंदा की, बहुत तरह से उन्हें समझाया और बहुत तरह से उन्हें आश्वासन दिलाया। पृथ्वीराज भी इस समय तक हताश से हो रहे थे। सपना, चंद का पत्र, अचानक समर सिंह का आगमन और गौरी का दिल्ली की ओर बढ़ने का समाचार तथा अपने राज्य की यह कमजोर अवस्था, ये सभी बातें पृथ्वीराज का दिल दहला रही थीं। पृथ्वीराज अपनी करनी पर पछता रहे थे, परंतु अब क्या ही हो सकता था। समर सिंह जी ने बहुत तरह से पृथ्वीराज को शर्मिंदा किया। अंत में पृथ्वीराज समर सिंह जी के कहने के अनुसार काम करने को तैयार हो गए। आपको याद होगा कि पृथ्वीराज ने चामुंड राय को कैद करके रखा था। इसीलिए जब पृथ्वीराज समर सिंह जी के कहने के अनुसार काम करने को तैयार हो गए, तब समर सिंह जी ने उन्हें पहले चामुंड राय को छोड़ देने के लिए कहा। पृथ्वीराज ने उनकी यह आज्ञा सादर स्वीकार कर ली और अपने राज पुरोहित गुरुराम के हाथ पगड़ी और तलवार उनके पास भेजनी चाही। परंतु समर सिंह जी आग्रह करके उन्हें अपने साथ चामुंड राय के घर पर ले गए। संकोचवश पृथ्वीराज चामुंड राय के पास नहीं गए। उन्होंने अन्य सामंतों को भेजकर उसके पैर की बेड़ी उतारने को कहा। बहुत कुछ कहने सुनने पर भी जब चामुंड राय सहमत नहीं हुए, तब खुद पृथ्वीराज तथा रावल समर सिंह जी उसके पास गए। पृथ्वीराज ने खुद अपने हाथों से अपने कमर की तलवार खोलकर उसे दी और बेड़ी काट दी। चामुंड राय खुश हो गए। चामुंड राय के छूटने का समाचार सुनकर दिल्ली के सारे निवासी खुश हो उठे। दूसरे ही दिन दरबार लगा और विचार होने लगा कि अब क्या करना है। बहुत सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि राज्य का भार राजकुमार रेणु सिंह पर सौंपकर युद्ध क्षेत्र की ओर चला जाए। जब विपरीत समय होता है तब सारी बातें विपरीत हो जाती हैं। इन बुरे दिनों में पृथ्वीराज का एक वीर सामंत आपस के वाद विवाद से चिढ़कर शत्रु पक्ष में जाकर मिल गया। हिंदू हमेशा धर्म युद्ध करते आए हैं और यही सोचकर पृथ्वीराज तथा अमर सिंह सेना सहित उसी तराइन के युद्ध क्षेत्र की ओर चलने के लिए तैयार हो गए। वीर पत्नी संयोगिता ने आज अपने हाथों से अपने पति देव को रणवेश से सजाया। हालांकि उसका भी दिल कांप रहा था और उसे साफ पता चल रहा था कि इस बार उसके पति देव हमेशा के लिए जा रहे हैं। फिर भी ऊपर से वह किसी भी प्रकार से अधीर नहीं दिखाई दे रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि यदि पृथ्वीराज जिंदा लौट आए तो ठीक है, नहीं तो फिर सूर्य लोक में तो जरूर ही हम दोनों मिलेंगे। पृथ्वीराज संयोगिता से विदा लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। पानीपत के मैदान में ही मोहम्मद गौरी को रोकने का विचार किया गया। इधर अपनी सेना सहित पृथ्वीराज गए और दूसरी ओर से शहाबुद्दीन बढ़ता हुआ आया। दोनों सेनाएं तराइन के युद्ध स्थल पर जा पहुंची। इस समय शहाबुद्दीन ने फिर चाल से काम लिया। उसने पहले पत्र भेजकर पृथ्वीराज को इस्लाम धर्म ग्रहण करने तथा राज्य का कुछ अंश देने के लिए लिखा। इस पर जब पृथ्वीराज ने उसे उसके पुराने काम और बार बार हारने की बात सुनाई और पत्र का उत्तर घमंड से भरे शब्दों में देते हुए उसे लौट जाने के लिए कहा, तब उसने धोखा देने के लिए यह उत्तर दिया कि हम केवल सेनापति हैं, राजा हमारे भाई हैं, इसीलिए उनकी आज्ञा पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। उनकी आज्ञा बिना हम लौट भी नहीं सकते, इसीलिए आप कुछ दिन का समय दें जिससे यहाँ का सारा हाल उन्हें लिखकर हम उत्तर मंगा लें। जब तक उत्तर ना आए तब तक युद्ध स्थगित रहे। हालांकि शहाबुद्दीन ने यह उत्तर दिया था, परंतु समर सिंह जी ने उसके इस उत्तर पर विश्वास नहीं करके अपनी सेना को हमेशा तैयार रहने की आज्ञा दी। सेना तैयार हुई, परंतु शहाबुद्दीन की ओर से कोई आक्रमण नहीं हुआ। राजपूत बिना सावधान किए ही शत्रु सेना पर आक्रमण अचानक नहीं करते। बहुत दिनों से यही प्रथा चली आ रही थी, शत्रु को सावधान किए बिना आक्रमण कर देना राजपूत जाति अधर्म युद्ध समझती थी और इसी कारण बहुत बार हिंदुओं को हारना भी पड़ा था। इस युद्ध के संबंध में सैनिकों की गिनती बताना बहुत कठिन है। यह युद्ध सन 1192 ईस्वी में हुआ था। उस दिन भारतवर्ष के लिए बहुत बुरा समय आ चुका था। पृथ्वीराज तथा उनके सैनिक हालांकि युद्ध क्षेत्र में लड़ने को उपस्थित थे, परंतु सभी अपने अपने जीवन से निराश हो रहे थे। सेना पहले से ही निकम्मी हो रही थी। अब इस समय युद्ध करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। गग्गर नदी के तट पर दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने स्वामी की आज्ञा का इंतजार कर रही थीं। रावल समर सिंह जी अपनी सेना का निरीक्षण करके सैनिकों को यथोचित स्थान पर स्थापित कर रहे थे तथा उत्साहपूर्ण बातों से सेना को उत्साहित कर रहे थे। इसी तरह से सारा दिन बीत गया। अमावस्या की अंधेरी रात आ पहुंची। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में जाकर बैठ गईं। पृथ्वीराज की सेना इस विचार से निश्चिंत थी कि यवनों का अभी आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि उसे शहाबुद्दीन के पत्र पर विश्वास हो गया था। शहाबुद्दीन ने शत्रु पक्ष को विश्वास दिलाने के लिए एक चाल और चली। रात होते ही उसने अपने तंबुओं के आगे आग जलाए रखने की आज्ञा दी, जिससे हिंदुओं को विश्वास रहे कि मुसलमानी सेना हिंदुओं पर आक्रमण नहीं करेगी। यही हुआ भी। यवन सेना के पड़ाव में आग जलती हुई देखकर हिंदू सेना और भी निश्चिंत हो गई और आराम से अपने अपने डेरों में आराम करने लगी। शहाबुद्दीन ने हिंदुओं को तो इस तरह धोखे में डाले रखा और उधर अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। रात भर में उसने अपनी सेना अच्छी तरह तैयार कर ली और सुबह होते ही जिस समय पृथ्वीराज की सेना नित्य कर्म में व्यस्त थी, उसी समय उसने आक्रमण कर दिया। हालांकि यवन सेना ने अचानक हिंदू सेना पर आक्रमण कर दिया था, फिर भी हिंदू सेना उसी अवस्था में युद्ध के लिए तैयार हो गई। भयानक युद्ध होने लगा। रावल समर सिंह तथा राजा पृथ्वीराज घोड़ों पर सवार होकर अपनी सेना का निरीक्षण करते हुए इधर उधर चक्कर लगाने लगे। दोनों सेना आपस में थोड़ी देर में ऐसी जूझ पड़ी कि अपना पराया दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। तबकात ई नसीरी में लिखा हुआ है कि कश्मीर की हिंदू सेना भी यवनों के साथ इस युद्ध में पृथ्वीराज से लड़ी थी और जम्मू के नरसिंह देव के हाथों गोयंद राय मारा गया था। धीरे धीरे हिंदू सेना की ताकत कम होने लगी। लड़ते लड़ते पृथ्वीराज भी यवन सेना के बीच में जा पहुंचे। हालांकि उन्होंने बहुतों को मार गिराया, परंतु खुद भी इस तरह घिर गए कि बाहर निकलना कठिन हो गया। इस समय जयत राय ने चाल से काम किया। उसने पृथ्वीराज के माथे का छत्र उतार कर अपने माथे पर रख लिया, परंतु कुछ ही देर में जयत राय मारा गया। थोड़ी ही देर बाद चामुंड राय भी मारा गया। आज के युद्ध में गुरु राम भी मारे गए। राजपूतों ने हालांकि बहुत पराक्रम दिखाया और अपने प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध करने लगे, फिर भी आज के युद्ध में भारत की स्वतंत्रता का सूर्य हमेशा के लिए अस्त होने वाला था। इसीलिए लड़ते लड़ते समर सिंह जी भी मारे गए और शाम होते होते चौहान वंश का कुल दीपक पृथ्वीराज भी मारा गया। भारत के दुर्भाग्य से यह वीर केवल 46 वर्ष की उम्र में ही मारा गया। इसी तरह से भारत का सौभाग्य सूर्य उस दिन से अस्त हो गया। पृथ्वीराज के अंतिम समय के बारे में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। रासों का मत यह है कि पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन कैद करके गजनी ले गया और कैद खाने में डाल दिया। पृथ्वीराज ने पहले तो अपने छूटने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु जब किसी तरह भी सफल नहीं हो सका तब उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। इस पर शहाबुद्दीन खुद समझाने गया, परंतु शहाबुद्दीन को देखते ही पृथ्वीराज गुस्से में भर गए। आंखें लाल करके उसकी ओर देखने लगे और कड़वी बातें कहने लगे। इस पर शहाबुद्दीन ने गुस्सा होकर उनकी आंखें ही निकलवा ली। आंखें ना रहने के कारण पृथ्वीराज की हालत बहुत कमजोर हो गई। अब उन्हें अपने कामों पर पश्चाताप होने लगा। वे मन ही मन सोचने लगे कि बेकार में एक वेश्या के कारण मैंने कैमास को मार डाला, हाथी के लिए वीर चामुंड राय को कैद किया और अपनी विलास वासना पूरी करने के लिए संयोगिता तथा दूसरी रानियों के कारण अपने इतने सैनिक तथा सामंत मरवा डाले, और संयोगिता के रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि राज्य शासन तक छोड़ दिया। पृथ्वीराज इसी तरह अपने कर्मों को याद करके पछताने लगे। उधर जब यह युद्ध समाप्त हो गया, तब किसी तरह कवि चंद मंदिर से बाहर निकला और अपने स्वामी की दुर्दशा का समाचार सुनकर गजनी जा पहुंचा। बड़ी मुश्किल से वह गजनी में शहाबुद्दीन के पास गया और उसे खुश करके उसने पृथ्वीराज से मिलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। वहां पृथ्वीराज की दुर्दशा उसने अपनी आंखों से देखी, जिसके बाद वो व्याकुल हो गया। उसी समय उसके दिल में शहाबुद्दीन से बदला लेने का विचार पैदा हो गया। कविचंद ने अपने शब्दों के जाल में शहाबुद्दीन को तभी फंसाया और कहा कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण मारना जानते हैं। उन्होंने बचपन में मुझे यह काम दिखाने को कहा था, परंतु अवसर नहीं मिला। अब आप भी देखें और मैं भी देखकर अपनी इच्छा पूरी करूंगा। इस बात पर बहुत तर्क वितर्क हुआ। मोहम्मद गौरी के मंत्रियों ने उसे अनुमति देने के लिए बहुत मना किया, परंतु कवि चंद की बातों से शहाबुद्दीन की उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि उसने आज्ञा दे दी। पृथ्वीराज इस समय बहुत कमजोर हो गए थे। कवि चंद की प्रार्थना के अनुसार उन्हें कुछ दिनों तक पौष्टिक आहार भेजा गया। इसके बाद एक दिन तमाशे की तैयारी हुई। 7 तवे लटकाए गए और अंधे पृथ्वीराज को लाकर खड़ा किया गया। कवि चंद ने चुपचाप पृथ्वीराज को इस तमाशे का उद्देश्य समझा दिया था, साथ ही शहाबुद्दीन को भी कह दिया कि यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तो पृथ्वीराज बाण नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बाण चलाने के पहले उन्हें बाण छोड़ने की आज्ञा आपको ही देनी पड़ेगी, क्योंकि वे आपके यहाँ कैदी और आपके आश्रित हैं। पृथ्वीराज के हाथ में कमान दे दी गई। जैसे ही उन्होंने उसे ताना, वैसे ही वह धनुष टूट गया, जिसके बाद अंत में पृथ्वीराज का ही धनुष उनके हाथ में दे दिया गया। उस धनुष को हाथ में लेते ही पृथ्वीराज भी खुश हो गए। उन्होंने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। कालग्रस्त शहाबुद्दीन ने तर्कस भी देने की आज्ञा दे दी। इसी समय कवि चंद ने बहुत ही ओजस्विनी भाषा में पृथ्वीराज को उत्साहित करते हुए कहा कि आपके हाथ में शस्त्र, सामने तवे और बाई ओर शाह बैठा है। अब अपने हृदय को मजबूत करके इस अवसर को उपयोग में लाइए। पृथ्वीराज ने भी कहा कि सच है, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मैं जरूर तुम्हारे कहने के अनुसार ही काम करूंगा। चारों ओर से शत्रुओं से घिरे रहने पर भी हाथ में अपना धनुष पाते ही पृथ्वीराज अकड़ कर खड़े हो गए और शहाबुद्दीन की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। पहले तवों पर आघात किया गया और फिर शहाबुद्दीन ने हुंकार दिया। हुंकार सुनते ही पृथ्वीराज ने ऐसा बाण मारा कि वह शहाबुद्दीन के ठीक मुंह में लगा और तालू फाड़ कर निकल गया, जिसके उपरांत शहाबुद्दीन जहां का तहां छटपटाता और हाथ पैर पटकता हुआ रह गया। बहुत हाहाकार मचा। उसी समय लोग कविचंद को मारने के लिए दौड़ पड़े, परंतु उसने छुरी निकालकर अपने हाथों से छुरी अपने पेट में घोंप लिया और फिर पृथ्वीराज को दे दी, जिसके बाद पृथ्वीराज ने भी वह छुरी अपने कलेजे में घोंप ली और इसी तरह आत्महत्या द्वारा पृथ्वीराज का अंत हुआ। यह तो पृथ्वीराज रासो का विवरण है। घरों में भी यही कथा प्रचलित है, परंतु विश्वास नहीं होता कि पृथ्वीराज जैसे वीर क्या आसानी से शत्रु के हाथों में पड़ जाने वाले अथवा आत्मसमर्पण करने वाले थे। इसके अलावा दूसरे इतिहासकारों का मत भी इसके विपरीत है। उनका कहना है कि पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए थे। हंटर साहब का कहना है कि 1193 ईस्वी में मुसलमानों ने फिर पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज पराजित हुए और मार डाले गए। उनकी रानी संयोगिता उनके शव के साथ सती हो गई। तबकात ए नसीरी का मत दूसरा ही है। उसका कहना यह है कि पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन ने पकड़कर मार डाला। इस संबंध में तबकात ए नसीरी प्रणेता मनहाज ने लिखा है कि पृथ्वीराज हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे, परंतु वे अपनी हार होती देखकर हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर रण क्षेत्र से भाग गए, परंतु सरस्वती के किनारे पकड़े गए और यवनों ने उन्हें मार डाला। विंसेंट स्मिथ तथा दूसरे इतिहासकारों ने भी यही बात स्वीकार की है। उन सब ने पृथ्वीराज को रण क्षेत्र में ही मारना स्वीकार किया और यही बात वास्तव में मानने योग्य और प्रामाणिक भी लगती है।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।